इवनिंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। रेनबो टॉकीज लेकर ताहिर हाजिर हो गया है राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एक घंटे तक मैं सुनाऊंगा आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी जो 1982 में सिल्वर जुबली ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। जी, बात कर रहा हूँ राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म प्रेम रोग की। इस फिल्म ने नाम के साथ साथ पैसा भी खूब कमाया। प्रेम रोग के लिए राज कपूर साहब को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडिटर का अवार्ड मिला। पद्मिनी कोल्हापुरी को बेस्ट एक्ट्रेस का।
मोहब्बत है क्या चीज़, हमको बताओ।
संतोष आनंद को इस गाने के लिए अवार्ड मिला। और भी बहुत सारे अवार्डों से प्रेम रोग को नवाजा गया। राज कपूर साहब ने एक बार फिर इस फिल्म के जरिए सामाजिक मुद्दों को उजागर किया। प्रेम रोग कुल मिलाकर एक बेहतरीन फिल्म है और वही फिल्म आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी, शम्मी कपूर, नंदा, तनुजा, विजेंद्र घाटके, सुषमा सेठ, कुलभूषण खरबंदा और रजा मुराद। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत लिखे संतोष आनंद ने। और प्रेम रोग के गीत गाए सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर, सुधा मल्होत्रा और अनवर ने। कहानी शुरू होती है एक गाँव में जहाँ एक ठाकुरों का परिवार रहता था। सारा गाँव इस परिवार के आगे सर झुकाता था। उनके परिवार में एक ही बेटी थी मनोरमा, जो सभी की लाडली थी। मनोरमा का रोल किया पद्मिनी कोल्हापुरी ने। मंदिर के पुजारी का एक भांजा था देवधर यानी कि ऋषि कपूर, जिस पर बड़े राजा ठाकुर यानी शम्मी कपूर के बहुत एहसान थे। देवधर अनाथ था और उसे पढ़ने लिखने बाहर बड़े राजा ठाकुर ने अपने खर्चे पर भेजा था। बचपन में मनोरमा और देवधर की खूब दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब तो मनोरमा बड़ी हो चुकी है और देवधर भी पढ़ने बाहर गया हुआ है।
देखो तो सही, कितना दिन निकल आया है। चार चाबाने गुड़िया, तुम्हारी राधा भी आके बैठी है।
यूं ही झूठ मूठ बहका है हमको। कहाँ है राधा?
नीचे है बिटिया, पूजा घर में। बड़ी माँ ने रोक लिया, आती पढ़ने को। ओ, ये लो, झाड़ू लगाने में खिसक गई थी।
हमें नहीं पसंद। कितनी बार कहा हमारी चप्पल हटाया करो, वापस जगह पर रखा करो।
आप सुन रहे हैं रेनबो टॉकीज दिल्ली और एनसीआर में 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और देश भर में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर।
आकाशवाणी एफएम रेनबो।
मनोरमा की सहेली राधा, जो देवधर के मामा की बेटी है, मनोरमा को देवधर के आने की खबर देती है।
लाइब्रेरी से कहानी की किताबें लाएंगे। हाँ,
लाइब्रेरी में रखा है क्या है?
खाक।
मगर हाँ, किताबों का एक नया खजाना हाथ लगने वाला है आज। मेरे पढ़ाकू भैया आ रहे हैं, देवधर भैया।
मनोरमा और देवधर के बीच बहुत हंसी मजाक, रूठना मनाना शुरू हो जाता है। हालांकि मनोरमा बहुत ही बचकाना बातें करती थी और देवधर एक बहुत ही समझदार इंसान था। इसी बीच मनोरमा का भोलापन, उसकी मासूमियत देवधर को भा जाती है और देवधर उसे मन ही मन बेहद चाहने लगता है।
बढ़िया, दांत काटने वाले। काटो काटो, अगर काट सकती हो तो।
अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी।
Thank you.
समझा कुछ समझ ना पाया, कुछ समझा कुछ समझ ना पाया, दिल वाले का दिल भर आया। और कभी सोचा जाएगा क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया, जातन लागे वो तन जाने, जातन लागे वो तन जाने, ऐसी है इस रोग की माया मेरी इस हालत को, मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ, मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ, ओ जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी।
आप सुन रहे हैं रेनबो टॉकीज में फिल्म प्रेम रोग की कहानी और गीत। देवधर और मनोरमा की मुलाकातें अक्सर होती रहती थी, कभी मंदिर में कभी हवेली पर। एक बार देवधर मनोरमा से कहता है,
मनोरमा सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं, वही दो हाथ दो पांव आंखें कान चेहरा सबके एक जैसे ही तो होते हैं, फिर क्यों कोई एक सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है।
देवधर की ये बात सुनकर मनोरमा बहुत परेशान हो जाती है और वो नहर के किनारे देवधर को बुलाती है।
जानते हो सारी रात हम नहीं सोए, ऊपर से इतना परेशान है हम, गुस्सा नहीं आएगा हमें?
उसकी वजह?
तुम्हारी कल वाली बात और क्या?
कौन सी बात?
यही कि हमें भी एक दिन प्यार हो जाएगा, बस एक बात पूछ ले तुमसे तो हमें तसल्ली होगी।
ये दिन क्यों निकलता है, ये रात क्यों
छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ।
Yeah.
दिन गुजरे जो हम मैं कदे के मोड़ से एक मैं कश जा रहा था मैं से रिश्ता जोड़ के हमने पूछा किस लिए तू उम्र भर बीता रहा कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला अपनी धुन में बस यही गाता रहा मोहब्बत है क्या चीज हमको बता
आप सुन रहे हैं रेनबो टॉकीज। उधर देवधर अपनी दुनिया में ही मग्न था और इधर मनोरमा के लिए राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह के छोटे भाई कुमार नरेंद्र प्रताप सिंह का रिश्ता आता है। वीरेंद्र का रोल किया रजा मुराद ने और नरेंद्र का विजेंद्र घाटकी ने। मनोरमा के पिता का अभिनय किया वीर सिंह यानी कुलभूषण खरबंदा ने, जो देवधर के पंडित मामा यानी ओम प्रकाश से मनोरमा की झूठी कुंडली बनवाते हैं।
प्रणाम करता हूँ बड़ी माँ।
तुम अब आए हो पुजारी
जी?
चलो जल्दी से ये कुंडली देखकर बताओ अपनी रमा के लिए कैसे रहेंगे कुंवर जी।
अब रमा बिटिया की कुंडली मिल जाए तो मिला के देखता हूँ।
मेरे साथ आओ पुजारी, आओ भीतर आओ बैठो। अब कुंडली बनाओ
जी। परंतु कुंडली तो
कुंडली मिलानी नहीं है, बनानी है
जी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है छोटे राजा? आखिर रीत रिवाज भी तो कुछ।
रीत रिवाज हमें मत समझाओ पुजारी, तुम्हारे ढकोसलों में पढ़कर हम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देंगे, समझे?
जब मनोरमा पहली बार नरेंद्र को देखती है तो उसे देवधर की कही बात सच होती दिखती है, यानी वो पहली ही नजर में नरेंद्र को बहुत पसंद करती है।
सभी इंसान एक से ही तो होते हैं, फिर क्यों कोई एक सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है।
अचानक बड़े राजा ठाकुर यानी शम्मी कपूर देवधर से उसकी जिंदगी छीन लेते हैं।
बड़े अच्छे मौके पर आए हो तुम देवधर। वाह।
प्रणाम बड़े राजा ठाकुर।
भाई यह हमारे पुजारी का भांजा है, शहर में पड़ता है, और आप हैं सुमेरगंज के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह जी।
प्रणाम।
और उनके छोटे भाई कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह जी।
नमस्ते।
भाई देवधर आज हम बहुत खुश हैं। जब पैदा हुई थी रमा हमने तभी सोच लिया था कि इसका ब्याह अपने से भी बड़े घर में करेंगे। आज हमारी सात पूरी होने जा रही है। कुंवर नरेंद्र अपनी रमा को देखने आए हैं।
और बेचारे देवधर की रही सही कसर मनोरमा पूरी कर देती है। इसी बीच जब मनोरमा देव से बात कर रही थी तभी उसकी माँ यानी नंदा देवधर के मन की बात जान लेती है।
कहाँ थे तुम देव? कब से बुला रहे थे हम तुम्हें? वो आए हैं मालूम? बड़े बाबूजी के पास बैठे।
मैं वहीं से आया हूँ।
देखा तुमने उन्हें? कैसे लगे? हमें तो बहुत अच्छे लगे। अब देखो ना, अभी उस रोज तुमने एक बात कही और आज सच भी हो गई।
कौन सी बात?
नहीं कहा था तुमने कि सब इंसान एक से होते हैं पर कोई इतना प्यारा लगने लगता है कि बस हमने इन्हें देखा और लगा यही तो है वो।
मुबारक हो मनोरमा, बहुत बहुत मुबारक हो।
जब पहली बार नरेंद्र मनोरमा से मिलते हैं तो वो शर्मा जाती है।
उन्हें जाने दीजिए, शर्मा रही है। कुछ आप ही बता दीजिए रमा जी के बारे में।
जी
मैं? आप तो अच्छी तरह जानते होंगे।
अच्छी तरह तो कहाँ जान पाया, मगर हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि बहुत भोली है, बहुत भली है मनोरमा। उसकी बूंद की तरह पाक, साफ और नाजुक। उसने तो कभी पांव तक जमीन पर नहीं रखे कुंवर साहब, बहुत संभाल के रखिएगा उसे। बस इतनी विनती करूंगा मैं आपसे।
देवधर तो मानो टूट सा गया हो, वो सारे गमों से बचकर भाग जाना चाहता है लेकिन उसे खुद रमा ही रोक लेती है।
जा रहा हूँ मनोरमा।
तो जाओ ना, रोका किसने है?
क्या बात है, नाराज हो?
कम होते नाराज होने वाले। बस राधा थी ना तुम्हारी अपनी, वो तो चली गई, अब हमसे मतलब क्या रहा?
रमा क्या बात है, क्या झगड़ा कर रही है इससे?
देखो ना बड़े बाबूजी, चले आए हैं सामान उठा। राधा की शादी के लिए रुक सकते थे, तब कोई काम नहीं याद आया। अब हमारे बखत पे बड़े कामकाजी हो रहे हैं। बोल दीजिए बड़े बाबूजी इनको जाने को, वरना इनकी ट्रेन छूट जाएगी। और आपको हम बोल देते हैं कि हम शादी ही नहीं करेंगे, बस खत्म हो गई बात।
देवधर तुम रुक सकते हो तो रुक ही जाओ, शादी के घर में 50 काम होते हैं, कुछ हाथ ही बटा दोगे।
जी अच्छी बात है बड़े राजा ठाकुर।
चल वो रुक रहा है, अब तो गुस्सा छोड़ दे।
देखो ना हफ्ते भर की तो बात है, हम चले जाए फिर तुम भी चले जाना।
ठीक है मनोरमा, जैसे तुम कहो।
हाय तुम कितने अच्छे हो देव, जब भी तो इतना प्यार करते हैं हम तुम्हें।
आप सुन रहे हैं रेनबो टॉकीज, मैं हूं आपके साथ ताहिर। और आखिर देव के लिए वो कयामत का दिन आ ही जाता है, आज मनोरमा की शादी है। अब जो गीत आप सुनेंगे वो बहुत गौर से सुनिएगा, देवधर के दिल की ही आवाज है, दिल से दिल तक।
सर में है दिल में आ बड़ी मुश्किल में आ बैठे। जो मिलते रहते हैं वो दिल में समा जाते हैं, जो मिलके नहीं वो याद बहुत याद आते हैं। ये प्यार था ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, ये निगाहों का ही कसूर था, ये निगाहों का ही कसूर था, न तेरी
दस्तूर था न तुझे पता न मुझे पता ये प्यार था या कुछ और था।
मनोरमा विदा होकर नरेंद्र के घर पहुंचती है, जहां उसकी भाभी यानी राजरानी, जिनका रोल किया तनुजा जी ने, राजरानी मनोरमा से कहती है,
मैं तो हमेशा सोचती थी वो लड़की बड़ी भाग्यवान होगी जिसे मेरे देवर जी ब्याह के लाएंगे, मगर नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मेरे देवर जी ज्यादा भाग्यवान।
चढ़ाओ भाभी चढ़ाओ, अरे बाद में पछताओगी कि किस कदर नखरे करती है।
देवर जी बातों में मत बहकाओ, पहले भाभी का नेक झुकाओ फिर भीतर पैर रखना, जड़ाओ कंगन लूंगी ये मोटे मोटे।
हाय भाभी तू तो बिल्कुल बुद्धू निकली, मांगने भी बैठी तो जड़ाओ कंगन, अरे आज अगर नौलखा हार मांग लेती तो भी इनकार नहीं करता।
ना देवर जी अब मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, उसी से मांगूंगी जो सबको देता है, भगवान करे मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए मेरे भैया।
भाभी
मनोरमा अपने घर आ गई है, अब उसे लेने नरेंद्र शादी के बाद पहली बार जा रहा है, बहुत खुश है।
देवर जी
सच तो ये है भाभी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा जाने को, इतनी सुंदर भाभी छोड़ के कोई जाता है? असल में भाभी बड़े भैया ने मेरा पत्ता काट दिया, वरना मैं तो तुम्हें से शादी करने वाला था।
क्या कहा, लुच्चे लफंगे बाहर से मस्करी करता है।
अचानक रास्ते में नरेंद्र का एक्सीडेंट हो जाता है, उस हादसे में वो मारा जाता है। बेचारी मनोरमा शादी के चौथे ही दिन विधवा हो जाती है, अब उससे कैसे कैसे इम्तहान जिंदगी लेना शुरू करती है। सुनिए,
बहू के चौखट में पांव पड़ते ही जिसका लाल चला गया होगा वो तो अपने कर्मों को कोस रहा होगा, जाने किस मनहूस घड़ी में तय किया था रिश्ता।
होश हवास कुछ है या नहीं चिदामी, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं आई कि आके छोरी के बाल काट जाते?
हम बाल नहीं कटवाएंगे, क्या कर रहे हैं आप लोग, इतने सुंदर केस काटने को जी कैसे चला आप लोगों का।
अरे ये राजरानी ये क्या बात बोल रही है,
मैं नहीं मानती ये सब, बुरा ना माने बुआ जी पर रमा अब आपकी बेटी नहीं हमारे घर की बहू है, फेरे हुए थे जिस दिन उसी दिन ये घर तज दिया था उसने, अब जो जैसा करना होगा हम करेंगे, लेवाने आए हैं आज्ञा दीजिए।
राजरानी मनोरमा को अपने साथ ले जाती है, राजरानी के बेटे से मनोरमा घुल मिल गई है और अपनी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता गुजारना सीखने लगी है, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह मनोरमा को बुरी नजर से देखने लगा है और एक रात मौका पाकर मनोरमा की इज्जत पर हमला बोल देता है।
घबराओ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, आखिर नरेंद्र मेरा छोटा भाई है, उसमें और मुझे क्या फर्क है, तुम चाहो तो मुझे भी अपना पति मान सकती हो, हाँ ऐसा रिवाज भी है।
जब राजरानी घर वापस लौटती है सारी बात का अंदाजा लगा लेती है।
मनोरमा हम वापस अपने घर जाएंगे जीजी। हाँ मनोरमा मैंने बहुत बड़ी भूल की जो तुझे वहाँ से ले आई, जन्म से यही तो सिखाया गया है पति परमेश्वर होता है, भले वो औरत को पाँव की जूती समझे या अपनी जायदाद, सो उनके खिलाफ एक लफ्ज मुंह से निकालते मेरी जबान गल जाएगी, मगर हाँ इतना जरूर कहूंगी कि ठाकुरों के इन खूबसूरत महलों की ऊंची छतों और संगे मरमर के दीवारों के बीच एक बड़ी सराग है, बहुत ही घुटन है यहाँ, पर तेरे पास एक घर अब भी है जहाँ तू लौट के जा सकती है, तू जा मनोरमा वापस चली जा मनोरमा अपने माँ बाप के घर।
जब मनोरमा अपने घर पहुँचती है तो उसके साथ कैसा सलूक होता है।
कौन आया है मुनीम जी?
रमा बेटिया आई है हुजूर।
रमा
जी?
रमा रमा माँ अब हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे माँ।
क्यों? दाई तो थी बड़े ठसके से, क्या अब हम यहाँ नहीं रहेंगे? फिर क्या हुआ? और वो जो तेरी जिठानी राज कराने ले गई थी सो इतना भी मुंह नहीं रखा कि खुदा के छोड़ जाती, नौकर के साथ भिजवा दिया।
क्या क्या करती हो, घर आई बेटे से ऐसे बात की जाती है क्या?
तो और कैसे की जाती है, कहना आसान है पर विधवा को सहेज के रखना कोई मजाक नहीं, फेर दिया ना खोटे सिक्के से चार ही दिन में। अब तू उधर कहाँ जा रही है?
अरे भाई ऊपर अपने कमरे में जा रही है।
ऊपर इसका कमरा मेरा कोई नहीं है, नीचे रहेगी जहाँ तुम्हारी माँ रही थी विधवा होने के बाद, और तुम जाकर अपनी बैठक संभालो, औरतों के काम में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, जो जैसा रिवाज है वैसा ही होगा समझे। महाराज ओ महाराज चाबी उधर की और खोलो कमरा।
मनोरमा एक एक बात अपनी माँ को बता देती है।
रमा 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 मेरा जी घबरा रहा है, सच सच बता बात क्या हुई।
बोल रमा बोल, तुझे मेरी कसम। क्या बताए माँ, रात जैसी हमारे कमरे में
से जिक्र भी नहीं करना। तू जानती नहीं इन ठाकुरों को, इनकी नाक बड़ी ऊंची होती है। एक गोली उस कमीने के सीने में ठोकेंगे, एक तेरे और बाकी की गोलियां लाशें ही लाशें बिक जाएंगे हर तरफ। मुंह पे ताला लगा ले मेरे बच्चे, मुंह पे ताला लगा ले।
इधर मनोरमा के ऊपर किस्मत के जुल्म हो रहे थे, उधर देव इन सब बातों से अनजान राधा के घर पहुंचता है मनोरमा के हाल चाल लेने।
कुछ दिनों से जी बहुत घबरा रहा था, रहने गया तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे पास चला हूँ। मनोरमा के बारे में किससे पूछता है, तुम इसे तो पूछता ना।
मैंने अच्छा नहीं किया ना जो तुम्हें टोका, क्या पता तुम दोनों का ही मेल हो जाता।
नहीं राधा, तुमने तो अच्छा किया जो वक्त रहते ही टोक दिया। मनोरमा ठहरी बड़े घर की बेटी, मैं उसे सब वो कहाँ दे पाता जो कुंवर नरेंद्र दे सकते हैं। अच्छा कैसे कुंवर साहब, अच्छे तो है वो?
देव भैया
सच कहना राधा, मनोरमा खुश है ना उनके साथ, सुखी है ना दोनों।
देव भैया
सच सच बताओ राधा, तुम्हें मेरी कसम राधा, क्या क्या बात है?
कैसे बताऊं मैं, एक पहाड़ उस पर टूटा है, दूसरा मैं तोड़ूंगी तुम पर। शादी के चौथे दिन विधवा हो गई तुम्हारी रमा।
देवधर्म मानो टूट सा गया हो, बिखर गया हो। उदास मन लिए वो अपनी रमा के पास पहुंचता है उसका हाल चाल जानने के लिए।
इतने सारे जूते चप्पल क्या हुए तुम्हारे मनोरमा?
कौन से देव? वो सर में सितारों की कढ़ाई और सरी गोटे वाले।
मनोरमा
बहुत कुछ मिला था हमें देव, पर देखो ना सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया।
ऐसा नहीं कहते मनोरमा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
फिर मनोरमा कहती है
अच्छा तो हम चले देव, फिर सूरज डूबने के बाद हम खाना नहीं खाते।
मनोरमा खाना तो मैंने भी नहीं खाया, साथ चलने को नहीं कहोगी?
तो चलो अच्छा ही होगा, अकेले नहीं खाना पड़ेगा हमें। महाराज देव खाना यही खाएंगे, एक खाल लगा कर दे जाना।
एक खाल? मनोरमा तुमने भी तो खाना नहीं खाया। मनोरमा
हम तो मंदिर जाते वक्त ही पका कर रख जाते हैं, लौट कर फिर वक्त नहीं बचता ना।
तुम्हारा खाना महाराज नहीं बनाता?
आओ
तुम यहाँ कहाँ जा, तुम्हारा कमरा तो ऊपर है। मनोरमा
नहीं अब हम यही आ गए हैं, सुबह शाम मंदिर आने जाने में आसानी रहती है ना। आओ
तुम ऐसे रहती हो,
खाओ।
और तुम?
हम बाद में खाएंगे, तुम खाओ ना।
कैसे हो देवधर?
प्रणाम छोटी माँ।
बैठो बैठो तू भी खा ले।
सुनो तो
कुल एक वक्त तो खाती है, फिर रात हो जाएगी तो वो भी रह जाएगा।
देवधर को मनोरमा के ऊपर हो रहे जुल्म नजर आते हैं, वो इस बात से ज्यादा नाराज होता है कि वो ये सारे जुल्म सितम सह क्यों रही है।
तुम ये खाना खाती हो?
बड़ी माँ कहती है विधवाओं के लिए यही ठीक रहता है, इससे मन शांत रहता है, बुरे ख्याल नहीं आते मन में। सुन
खीर बनी है आज, ला दूं थोड़ी सी?
नहीं माँ।
नहीं क्यों, खा ले ना, चोरी खाने से तो सामने खाना अच्छा। भगवान जाने इन विधवाओं को चटूरापन क्यों लगा रहता है इतना।
देव थाली पर से उठकर नहीं जाते, अन्य देवता का अपमान होता है।
जीते जागते इंसानों का कोई अपमान नहीं होता है।
तुम्हें बड़ी दया आ रही है हम पर, है ना देव? मगर हमने सब सहना सीख लिया है।
क्यों सीख लिया तुमने, क्यों? अत्याचार कर रही हो तुम अपने ऊपर मनोरमा, अन्याय कर रही हो तुम, और ये पाप है। अन्याय करना भी और अन्याय सहना भी पाप कर रही हो तुम मनोरमा।
देवधर प्रण लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मनोरमा की जिंदगी में बाहर ला कर रहेगा, मनोरमा को खुशियां देगा, हमेशा यही कोशिश करेगा कि मनोरमा मुस्कुराती रहे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े।
मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी जीते नहीं देख सकता मनोरमा, आज मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर देना मनोरमा। लेकिन लेकिन कोई झूठी रिवायतों के बोझ तले घुट घुट के मर जाए, नहीं मनोरमा नहीं, मैं ये नहीं देख सकता मनोरमा, नहीं देख सकता। मनोरमा
क्या है?
कल अनदेवता का अपमान करके चला आया था ना, आज प्रायश्चित करना चाहता हूँ तुम्हारे सामने। जाओ।
नहीं देव।
चुपचाप से खाती हो कि मैं जबरदस्ती करूँ? फिर भले तुम हमें दांत काट लेना, हम चौथा इंजेक्शन पेट में लगा लेंगे। हाँ लो।
नहीं।
ओहो मामी घर में काला मलम है कि नहीं, जरा उसे तैयार रखना, मनोरमा हमें पहले काटेगी फिर पट्टी बांध लेगी। क्यों म मनोरमा, ये क्या मनोरमा हंसते हंसते रोने लगी?
हम तो हंसना भूल ही गए थे देव, क्यों रुला रहे हो हमें और हंसाकर?
ऐसा नहीं करते मनोरमा, जरा सा मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कुराहट फूलों पर रोज की बूंद की तरह बिखर जाएगी। एक बार खिलखिलाकर देखो, लाखों करोड़ों फूल खिलकर बिखर जाएंगे। हाँ मनोरमा, हंस दो, हंस दो ना।
हमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। हमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। हमरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। हमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, प्रेम का ढाई अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए, सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजरे, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राज तुम्हें।
गुड मॉर्निंग भाई हरे डस्टबिन।
गुड मॉर्निंग नीले डस्टबिन। चलो भाई अब काम पे लग जाए।
अरे 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 प्लास्टिक बैग नीले में बहन जी,
इसमें सब्जी के छिलके हैं।
छिलके हरे डस्टबिन में और प्लास्टिक नीले डस्टबिन में, पेपर गत्ते और उनसे बनी सभी वस्तुएं नीले डस्टबिन में,
और हरे डस्टबिन में सिर्फ सब्जी, फल, बचा हुआ खाना, चाय पत्ती और गिरी हुई फूल पत्ती इत्यादि।
अच्छा
अब कर लो याद, घर हो या बाहर, गीला कूड़ा हरे में और सूखा कूड़ा नीले में।
अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
नमस्कार, मैं नितिन गडकरी बोल रहा हूँ। मैंने अक्सर यह देखा है कि कुछ लोग बिना हेलमेट के सफर करने में एक अजीब सी खुशी उनको मिलती है, पर मेरा यह मानना है कि बिना हेलमेट का सफर करना यानी आत्महत्या करने वाली बात होगी, और एक जिम्मेदार नागरिक ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक अनुशासित समाज और देश के लिए यह जरूरी है कि आप आज के आज ट्रैफिक अनुशासन को अपनाइए और अपनी जान बचाइए। जय हिंद।
सहकर जो अनाज उपजाता पर मेहनत का मूल्य न पाकर वह निर्धन रह जाता।
हर किसान के जीवन को सुंदर खुशहाल बनाए हम, बापू के सपनों के जैसा अपना देश बनाए हम।
किसान बोलते हैं तो किसानों को पूरा दाम न मिले, यहाँ तो बहुत कम दाम मिले, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सच्चा हिसाब करने की बात हुई तो हिसाब सच्चा करें और हिसाब बता दें कि देखो इतना तो किसानों को मिला है और इसमें कोई दूसरा खा नहीं सकता है, सीधा किसानों की जेब में चला जाता है, कल इतना जाता था आज इतना इत्यादि मिलता है। फिर वो दाम तो वो रखा, मिल वालों ने तो नहीं लिया, लेकिन पीछे बीच में आ जाते हैं छोटे छोटे ताजिर, वो तो मर जाते हैं, तो उनको मरना नहीं चाहिए।
फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, उस दिन स्कूल और आंगनवाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवा खिलाई जाएगी और जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें 14 फरवरी को दवाई दी जाएगी।
कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
खुले में शौच ना करें, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोएं, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे रखें, जूते हमेशा पहने।
कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
इसलिए खुशियाँ मना रहे हो चाचा?
अरे बेटा सेप्टिक टैंक का उद्घाटन जो है, मिठाई खा कर जाना।
चाचा सेप्टिक टैंक ठीक से बनवाए ना।
बेटा जिम्मेदार हूँ, बस्ती वालों की सेहत का ख्याल है, इसलिए सेप्टिक टैंक का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत मापदंड से बनवाया।
हाँ चाचा, बिना सोख पिट के सेप्टिक टैंक से गंदा पानी बाहर बहता है और भयंकर बीमारियां फैलाता है। याद रहे सेप्टिक टैंक की नियमित रूप से सफाई करवाना।
हाँ बेटा, ये सब ना करना कानून का उल्लंघन भी है।
अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हित में जारी।
आकाशवाणी FM रेनबो।
आप सुन रहे हैं रेनबो टॉकीज में फिल्म प्रेम रोग की कहानी और गीत, और मैं हूं आपके साथ ताहिर। देवधर वो हर कोशिश शुरू कर देता है जो शायद मनोरमा को खुशियां दे सके। वैसे ये सब वो कहीं ना कहीं अपने लिए ही कर रहा था, क्योंकि वो मनोरमा को बहुत चाहता था दीवानों की तरह। लेकिन
इसमें कोई सलमे सितारे नहीं जड़े हुए हैं।
ये क्या कर रहे हो तुम देव? लोग देख रहे हैं, जाने दो हमें।
अरे वो विधवा है, पता नहीं क्या तुम्हें? किसी लड़की के विधवा होने में उसका अपना क्या कसूर होता है? सूरज तो उस पर रोशनी डालने से इनकार नहीं करता, फूलों से भी खुशबू देता है। कुदरत तो अपने नियम किसी के लिए नहीं बदलता। फिर क्यों आप लोग उसे नंगे पांव चलने पर, रूखा सूखा खाने पर, चटाई पर सोने पर मजबूर कर देते हैं?
ये खबर के देवधर मनोरमा से शादी करना चाहता है पूरे गांव में फैलने लगती है, क्योंकि मनोरमा की मां जानती थी कि हमेशा से देवधर मनोरमा को चाहता था। वो मनोरमा से कहती हैं,
रमा एक बात पूछूं, क्या तू देव को प्यार नहीं करती? सच सच बता, क्या तू उसे नहीं चाहती?
तू भी माँ,
तुझे तुझसे ज्यादा मैं जानती हूँ रमा, मैं तेरी माँ हूँ। सच तो ये है तू उसे प्यार करती है, इसे तू भी जानती है, लेकिन मानती नहीं, क्योंकि वो गरीब है, अनाथ है, और तू इन महलों की चार दीवारी में पली ठाकुरों की बेटी, जिसे बचपन से यही सिखाया जाता है धर्म, आचार, नीति, समाज की मर्यादा, पवित्रता। सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ेगी?
मैं पूछती हूँ सोते जागते उठते बैठते यहाँ तक कि तेरी हर सांस के साथ देव 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 देव, ये प्यार नहीं तो और क्या है? सिर्फ प्यार है मेरी बच्ची, सिर्फ प्यार।
मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे किस्मत में तू नहीं शायद, सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने। तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। जिंदगी बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। शायद इसी को कहते हैं हर घड़ी बेकर।
सारे गांव में बदनाम हो चुके थे देवधर और मनोरमा। ये बात जब वीर सिंह को पता चलती है तो वो अपने साथियों को लेकर देवधर की खूब पिटाई करवा देता है।
ठाकुरों की बेटी की इज्जत पर हाथ डालने वाले का क्या हश्र होता है?
झूठ बोलते हो ठाकुर, बेटी की इज्जत की खातिर तुम नहीं आए हो यहाँ। जब सारा गांव उसे विधवा कहकर मुंह घुमा लिया करता है, उसमें इज्जत नहीं गई तुम्हारी, और मैंने जरा सी इज्जत देनी चाहिए उसे तो तुम्हारी इज्जत खराब हो गई। कुछ पता भी है तुम्हें कि तुम्हारे घर के किस काल कोठरी में पड़ी रहती है वो, कैसे रहती है वो?
जैसे भी रहती है वो हमारा निजी मामला है।
ये तुम्हारा निजी मामला नहीं है ठाकुर, क्योंकि ये गैर इंसानी तौर तरीके तुम्हारे बड़े घरों से शुरू होते हैं और फिर रीत रिवाज और नियम बनकर सारे समाज में फैल जाते हैं।
फिर वीर सिंह राजा विजेंद्र को मनोरमा को ले जाने के लिए कहता है।
रमा का सामान बांधो, राजा साहब लिवाने आए।
फिर मनोरमा की माँ जाकर सारी असलियत बड़े राजा ठाकुर को बताती है।
क्यों ना हम उन दोनों का ब्याह कर दें? देवधर खुद सारे गांव के सामने कह चुका है कि वो रमा से शादी करेगा।
ये मजाल, ये हिम्मत उस बदतमीज़ की।
वो कमजोर है ना, गरीब है, छोटा है, जान से मार दीजिए उसे, क्योंकि उसने आपकी बेटी की बुझी हुई जिंदगी में फिर से रोशनी डालने की कोशिश की है। मगर मैं पूछती हूँ, उसका क्या कर लिया आपने जिसने आपकी मासूम बेटी की इज्जत लूट ली? जी हाँ, उसकी तो खातिरदारी कर रहे हैं आपके भाई, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। सौंप दीजिए उसे कसाई के हाथों में, भले उसकी वो बोटी बोटी नोच ले।
जब ये बात बड़े राजा ठाकुर को पता लगती है तो वो देवधर को बुलवाते हैं।
ये तय है कि हम रमा की शादी फिर से नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हें एक राय देते हैं, तुम रमा को लेकर भाग जाओ।
बड़े राजा ठाकुर।
हाँ देवधर, हम उसी मासूम को जी भर के कोसेंगे कि कुल का नाम डुबो कर चली गई, और इस तरह अपनी नाक बचा लेंगे।
मगर मैं मनोरमा को भगा कर नहीं ले जाऊंगा। हाँ बड़े राजा ठाकुर, क्योंकि ये एक रमा और देव की जिंदगी का सवाल नहीं है, ये सदियों से चली आ रही गलत परंपराओं और रीत रिवाजों के खिलाफ लड़ाई है।
इधर विजेंद्र और वीर सिंह आपस में बातें करते हैं जो मनोरमा सुन लेती है।
उस बिद्दी की ये मजाल के वो हमारे खानदान की इज्जत पर हाथ डाले।
हमें लगता है कि सारा गांव, सारी बिरादरी उस कमीने देवधर के साथ है।
आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए, तो उसे मौत के मुंह से बचा नहीं सकते। मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है, आज ही रात उस कुत्ते की लाश के टुकड़े टुकड़े करके ऐसी जगह डाल देंगे कि चील कौवों को भी उसकी लाश का पता नहीं चलेगा।
मनोरमा भागते भागते देवधर की जिंदगी बचाने उसके पास जाती है।
बहुत प्यार करते हो ना हमसे, हम भी तुम्हें प्यार करते हैं देव, हम तुम्हें इसी प्यार का वास्ता देते हैं देव। अभी ये गांव छोड़कर चले जाओ, वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे।
नहीं मनो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा।
पर इतनी बात मान लो, शहर वापस लौट जाओ।
लौट जाऊंगा, मगर तुमसे शादी करने के बाद।
ठीक है, तुम्हारी इज्जत सही, लो मांग भर ली हमने।
ये क्या किया मनोरमा?
पति मान लिया है तुम्हें, अब हम अपने सुहाग की भीख मांगते हैं तुमसे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ ये गांव छोड़कर, चले जाओ। हमारा कहा मान लो, देखो एक बार विधवा हो चुके हैं हम, हमें दोबारा विधवा मत बनाओ।
जब वीर सिंह के आदमी देवधर को मारने के लिए आते हैं, तब गांव वाले देवधर का साथ देते हैं।
ले जाओ साले इन भाड़े के टट्टूवन को, और फिर गांव ठाकुर की देवड़ी पर, पता चल जाएगा कि गांव वाले अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बस्ती वालों, हमारी तुम्हारे साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, अगर है तो इसके साथ, जो चार दिन शहर में हमारे टुकड़ों पर पलकर अपनी औकात फूल गया है, जिसने मना करने के बावजूद अपने घर से बाहर कदम रखा। तमीज से बात करो छोटे ठाकुर।
रमा बाप की बेटी नहीं, मेरी पत्नी है।
खूब झगड़ा होता है, वीर सिंह को विजेंद्र गोली मार देता है क्योंकि वो मनोरमा को जिंदा जलाना चाहता था, लेकिन फिर बड़े राजा ठाकुर वो करते हैं जो उन्हें करना चाहिए था।
ये जुरत के तू ठाकुरों पे।
अरे राजा, आप
वीरेंद्र प्रताप, तेरा पाप तो भगवान राम भी माफ नहीं कर सकते, जो बड़ी बहू को माँ समान और छोटी बहू को बहन समान ना समझे, उसे मारने में कोई दोष नहीं।
वीर सिंह, काश वक्त रहते ही आंखें खुल जाती, काश।
फिर बड़े राजा ठाकुर खुद देवधर का हाथ मनोरमा को सौंप देते हैं।
भाइयों, देवधर ठीक कहता था, ये गंदी और गलत परंपराएं हमारे बड़े घरों से ही शुरू होती हैं। ये सब उसी का नतीजा है, और चूंकि मैं खुद उसका एक हिस्सा हूँ, कानून मुझे मेरे किए की सजा जरूर देगा।
नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आओ बेटे, लो संभालो इसे। देवधर भाई, तुम जीते और हम हार गए।
और इस तरह से फिल्म का अंत होता है। आज आपने सुनी फिल्म प्रेम रोग की कहानी और गीत रेनबो टॉकीज के तहत। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। बहुत जल्द वापस आऊंगा आप लोगों के बीच एक बार फिर। जब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। टेक केयर, बाय बाय।
आकाशवाणी एफएम रेनबो। आकाशवाणी एफएम रेनबो।